पृष्ठ संख्या 69, अध्याय 7, राग नंद। प्रस्तुत राग नंद को कुछ लोग आनंदी या आनंद कल्याण भी कहते हैं। यह कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है। इसमें दोनों मध्यम तथा अन्य स्वरों का केवल शुद्ध स्वरूप प्रयोग होता है। इसके आरोह में ऋषभ वर्जित एवं अवरोह वक्र संपूर्ण है। इस कारण इसकी जाति षाडव वक्र संपूर्ण मानी जाएगी। वादी षड्ज संवादी पंचम मानने का प्रचलन हो गया है। कुछ लोग पंचम षड्ज को वादी संवादी मानते हैं, जो विचारणीय है। इसका गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। इस राग में षड्ज पंचम पूर्ण तथा गंधार मध्यम अर्ध विश्रांति का स्वर है। बिहाग, गौर सारंग और हमीर इसके सहायक राग हैं। इस राग का वास्तविक स्वरूप इस प्रकार है। सागम ध प तीव्र म ग का कर लिए हुए रे ए सा ग रे कड़युक्त ग म म ग प ग म प ध नि ध कड़युक्त प ध प कड़युक्त तीव्र म प अ म कड़युक्त ग। कभी कभी यह स्वर मींड से उच्चारित होती है, यथा ग म प ध ध कड़युक्त नी नी से मींड लिए हुए प प कड़युक्त ध तीव्र म प से मींड लिए हुए ग म ध प तीव्र म ग का कर लिए हुए रे ए सा ग ग म म ग प प तार सा तार रे नी नी ई प ध तीव्र म प ग म ध प म ग का कर्ण लिए हुए रे ए सा ग ग म म ग प। कुछ संगीत विद्वानों का कहना है कि यह राग बिहाग, हमीर और गौर सारंग के मिश्रण से बना है, परंतु वास्तविकता यह है कि इस राग की जोड़ के राग की भांति मिश्रण को ध्यान में रखकर रचना नहीं की गई है। जिस भांति जोड़ के रागों को अर्थात बसंत बहार, भैरव बहार, जयंत मल्हार इत्यादि रागों की रचना करते समय दोनों रागों को परस्पर मिलाकर राग की रचना की गई है, इस प्रकार प्रस्तुत राग नंद की रचना करते समय रचनाकार ने किसी खास दो चार राग को ध्यान में रखकर राग की रचना नहीं की है। उस संगीत विद्वान ने तो एक उमंग में आकर अर्थात मूड में आकर स्वर समूहों का संगम बनाया और उसको नियमबद्ध राग का नाम दे दिया। हाँ, ये अवश्य है कि गाते बजाते समय इसमें बहुत से रागों का भास होता है, यथा तीव्र म प ध नी प ध तीव्र म प ग म ध अ प हमीर। शुद्ध स्वर के साथ तीव्र मध्यम का प्रयोग तथा ध प तीव्र म ग का कर लिए हुए रे ए सा कल्याण की ओर इंगित करता है। तार सा धनी प ध तीव्र म प ग यह वक्र अवरोह गौर सारंग का आभास कराता है। ध तीव्र म प ग म प स्वर समूह से कामोद झांकने लगता है। सा ग ग म स्वर संगति से नटराग के आगमन की शंका होने लगती है तथा मंद्र प मंद्र नीसा ग म प अथवा कभी कभी ग म पनी तार सा इस प्रकार बिहाग का यह स्वर समूह अन्य स्वर समूह के साथ भिन्न भिन्न स्थान पर जुड़कर झांकता करता रहता है। विशेष यह है कि गायन में एक राग के स्वर समूह को दूसरे राग के स्वर समूह से ढकते रहना चाहिए, जो गायक के राग ज्ञान की क्षमता पर निर्भर करता है। नहीं तो अधिकतर लोग द्रुत तान में बिहाग की तान गाकर ध प रेसा जोड़ दिया करते हैं। कभी कभी तो ध प म रे या प म ग रे सा इस प्रकार भी अवरोह में लोग प्रयोग कर बैठते हैं, जो इस संकीर्ण तथा वक्रपूर्ण राग स्वरूप के नियम और धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। पृष्ठ संख्या 70। उपरोक्त सभी रागों के स्वर समूह आपस में इस प्रकार मिलाए जाते हैं कि सभी आपस में घुल मिलकर नंद राग का रूप धारण कर लेते हैं, यथा सागा म ध प तीव्र म ग का कर ली हुए रे ए सा। नंद की विशेष स्वर संगति है ये। ग ग म यहाँ पे नट का आभास है, म ग प बिहाग है, प ध तीव्र म प ग म प कामोद का भास, तीव्र म प धनी प ध तीव्र म प ग ध प हमीर, मंद्र प मंद्र निसा बिहाग, ग म ध प तीव्र म ग कड़ियुक्त रे सा। नंद का विशेष अंग। कल्याण के स्वर समूहों की चर्चा इसलिए नहीं की गई है कि हमीर गौर सारंग कामोद में तीव्र मध्यम और ध प तीव्र म ग कड़ियुक्त रे ए सा, यह सभी स्वर समूह कल्याण अंग के ही द्योतक हैं। इस प्रकार यह सभी स्वर समूह आपस में मिलकर नंद राग के स्वरूप में परिणित हो जाते हैं। यह राग संकीर्ण कोटि का होने के कारण चंचल प्रकृति का अवश्य है, परंतु इसका यह चंचल स्वरूप ही इतना आकर्षक तथा आनंद देने वाला है कि नंद के स्थान पर इसका नाम आनंद कल्याण ही उपयुक्त लगता है। जहाँ सा ग म ध प तीव्र म ग का कर लिए हुए रे ए सा, इस स्वर में ध प तीव्र म ग कड़युक्त रे सा को मधुर कंठ से मस्ती के साथ कहा गया है कि आनंद की वर्षा होने लगती है। इसके आगे जब सा ग ग म इस प्रकार मध्यम को मुक्त करते हैं तो राग में चार चांद लग जाता है, परंतु यह मुक्त मध्यम का अर्ध विश्रांति क्षणिक के लिए ही होता है। पुनः म ग प स्वर समूह द्वारा पंचम पर पूर्ण विश्रांति किया जाता है। पृष्ठ संख्या 71। इसके आगे ग म प ध नी प ध तीव्र म प ग म ध प तीव्र म ग कड़युक्त रे ए सा, या ध तीव्र म प ग सा ग म ध प तीव्र म ग कड़युक्त रे ए सा, इस भांति पूर्वांग सवारते हैं। उत्तरांग में ग म प ध तीव्र म प तार सा, तार रे नी ई ध कड़युक्त प तीव्र म प ध नी प ध तीव्र म प ग म प नी तार सा, ध नी प ध तीव्र म प ग म ध प तीव्र म ग कर लिए हुए रे ए सा, ग ग म म ग प प तार सा, प नी तार सा, तार ग तार सा, तार रे नी ई ध कड़युक्त प, इत्यादि प्रकार से उत्तरांग को निभाते हैं। वास्तविक स्वरूप इस राग का धैवत के नीचे ही है, इस कारण उत्तरांग गाते समय पूर्वांग का भी सहारा लेना पड़ता है। इस राग के ठाट, जाति तथा गायन समय और स्वर प्रयोग के संबंध में सभी विद्वान एकमत हैं, परंतु वादी संवादी को लेकर विद्वानों में मतभेद दिखता है। अपने राम की इस मत से सहमत नहीं है, क्योंकि प्रस्तुत राग का षड्जवादी नियम विचारणीय है, क्योंकि जिस राग का मंद्र सप्तक उदास है उस राग का वादी स्वर षड्ज होना कहाँ तक उचित है। षड्जवादी होने का प्रमाण यह है कि राग का मंद्र सप्तक प्रबल होगा, जबकि नंद राग का मध्य सप्तक प्रबल तथा प्रधान है। यथा ग म ध प रेसा ग ग म म ग प नी ध तीव्र म प ग म ध प सा ग म प ग म ध प ध नी प ध तीव्र म प ग सा ग म प ग म ध प तीव्र म ग कड़ियुक्त रे सा ग म ग प। इस भांति पंचम की प्रमुखता या उपयोगिता राग में प्रत्यक्ष है। राग का केंद्र पूर्ण रूप से पंचम पर है। वैसे तो राग में षड्ज सर्वाधिक स्वर होता ही है, परंतु यहाँ राग के स्वरूप पर दृष्टिपात करने से पंचम ही राग का प्राण स्वर अर्थात वादी स्वर दिखता है। यदि यहाँ कोई कहे कि राग पूर्वांग प्रधान है, इस हेतु पूर्वांग में ही वादी स्वर होना चाहिए, ऐसे महानुभावों को यह समझना चाहिए कि पूर्वांग का क्षेत्र षड्ज से लेकर पंचम तक और उत्तरांग का क्षेत्र मध्यम से लेकर तारषज्ज तक होता है। उदाहरण के लिए मालकंस और ललित उत्तरांग राग है, परंतु उसका वादी स्वर मध्यम है, और पुनियाधनाश्री पूर्वांग राग है, परंतु उसका वादी स्वर पंचम है। अनेक राग ऐसे हैं जिनका वादी स्वर उपरोक्त प्रकार से है। इससे यह सिद्ध है कि यह नियम शास्त्र तथा विद्वानों के द्वारा गृहित है। पृष्ठ संख्या 72। इस हेतु यहाँ पूर्वांग और उत्तरांग के क्षेत्र की अनभिज्ञता में या राग के स्वरों की उपयोगिता पर विचार किए बिना ही किसी स्वर को वादी मान लेना, अर्थात पंचम की अवहेलना करना, मेरे विचार से लकीर का फकीर बनकर वास्तविकता को ठुकराना है। नहीं तो जो राग पूर्ण रूप से पंचम पर गाया जाता है, तो स्पष्ट है कि उसका वादी स्वर षड्ज किस प्रकार हो सकता है। इसलिए मेरे विचार से विद्वान जन वास्तविकता पर ध्यान दें और विचार करके पंचम को ही वादी माने तथा प्रचार में इसके अनुरूप ही शिक्षा दीक्षा में व्यवहार करें, तो राग का नियम पूर्ण रूप से तर्क सिद्ध होगा। तीव्र मध्यम से शुद्ध मध्यम का प्रभाव राग में अधिक होने पर राग का ठाट कल्याण माना जाएगा। यदि कोई कहे कि जब इस राग में शुद्ध मध्यम का प्रभाव अधिक है, तो इसका ठाट बिलावल क्यों नहीं हो सकता है? यह बिलावल ठाट में इसलिए नहीं हो सकता है कि इसमें शुद्ध मध्यम मुक्त होने पर भी इसमें बिलावल अंग बिल्कुल नहीं है, जबकि ऐसे रागों का ठाट निर्णय राग अंग को देखकर किया जाता है। शुद्ध मध्यम की अपेक्षा तीव्र मध्यम का महत्व लगाव की दृष्टि से कम होने पर भी कल्याण अंग के स्वर अधिक सामने आते हैं, यथा ध प तीव्र म ग कड़युक्त रे ए सा, तीव्र म प ध नि प, ध तीव्र म प, ध प तीव्र म प तार सा ध नि प, ध तीव्र म प के अतिरिक्त नंद राग का जो मुख्य स्वर समूह ग म ध प तीव्र म ग कड़युक्त रे ए सा है, इसमें पंचम पर हमेशा ही तीव्र मध्यम अणु लगन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कल्याण ठाट की पुष्टि करता है। इस हेतु गुणीजन इस राग को कल्याण ठाट के अंतर्गत ही मानते हैं। स्वरों का प्रयोग तथा महत्व। स्वर तथा राग का सृजनकर्ता षड्ज के महत्व का कहना ही क्या है, यह तो स्वयं सिद्ध है। इसके अतिरिक्त षड्ज का इस राग में ग म ध प तीव्र म ग कड़युक्त रे ए सा, इस मुख्य स्वर समूह में गंधार के कर से युक्त होकर केवल अवरोह करते समय प्रयोग है, जो केवल दीर्घ होकर सामने आता है। इस कारण ऋषभ का प्रस्तुत राग में दीर्घ बहुत्व है। इसके अतिरिक्त केवल आलाप के अंत में इसका प्रयोग होता है। इस दृष्टि से इसका अनाभ्यास अल्पत्व समझना चाहिए। पृष्ठ संख्या 73। इस राग में गंधार का प्रयोग इस भांति है, सा ग म प ग म प ग म प ध नि प ग म ध प। इस तरह आरोह के प्रयोग में दीर्घ रहित परंतु पुनः ध प तीव्र म ग कड़युक्त रे ए सा के बाद ग ग म इस तरह दीर्घ हो जाया करता है, परंतु अवरोह में प ग ग म प ध नि प ध तीव्र म प ग तार सा तार रे नी प ध तीव्र म प ग। इस प्रकार अर्ध विश्रांति का स्थान ग्रहण कर पुनः ग म ध प रे ए सा आरोहात्मक क्रम में न्यासहीन हो जाता है। अवरोह में हमेशा यह स्वर ग म ध प स्वर संगति के साथ जुड़ा रहता है, इसके बिना यह षड्ज की ओर आने से स्वतंत्र नहीं है। इस हेतु अवरोह में प रे सा संगति में लंघन भी स्पष्ट है। राग में यह स्वर कभी लंघन तो कभी सरल, कभी दीर्घ तो कभी अर्ध विश्रांति के रूप में प्रयोग होता है। इस हेतु इस विविध प्रयोग को मूल रूप से अभ्यास बहुत्व ही कहेंगे। इस राग की जितनी बंदिशें प्रचार में सुनाई पड़ती हैं, सभी बंदिशों का सम अधिकतर गंधार पर होता है। यह इसके अभ्यास बहुत्व होने का स्पष्ट प्रमाण है। प्रस्तुत राग में शुद्ध मध्यम युक्त अर्थात खुला प्रयोग होता है, परंतु इस स्वर पर स्वतंत्र रूप से न्यास नहीं होता है। इस स्वर पर न्यास करने से इस भांति राग रूप विकृत होने लगता है, यथा ध प रे ए सा ग म, प ध नि प ध तीव्र म प, ग म ध प रे ए सा ग ग म, तार सा तार रे नि प ध तीव्र म प, ग म ध प रे ए सा ग म, सा ग म प ग म ध प रे ए सा ग म। इस प्रकार मध्यम को केंद्र बनाकर मूल रूप से न्यास राग के हित में नहीं है, इसलिए मध्यम ध प रे सा ग ग म, म ग प, प ध नि प, ध तीव्र म प ग म, सा ग म ध प रे सा ग ग म, म ग प, ध नि प ध तीव्र म प ग म ग म ध प म ग रे सा ग ग म, म ग प। इस प्रकार आरोहात्मक क्रम में ध प रे ए सा स्वर संगति के बाद ग ग म इस भांति दीर्घ कर पंचम पर न्यास करते रहना चाहिए। करीब करीब गंधार की ही भांति इसकी स्थिति है। कुछ लोग मध्यम को इस राग में न्यास युक्त मानते हैं, परंतु अपने राम इस मत से सहमत नहीं हैं। हाँ, आलाप के बीच बीच में अपन्यास के रूप में मध्यम पर अर्थ विश्रांति करके राग स्वरूप को सुदृढ़ बनाने में सहायता अवश्य मिलती है। इस हेतु इस राग में इस स्वर को गंधार की ही भांति अभ्यास बहुत्व का स्थान मानेंगे। पृष्ठ संख्या 74। तीव्र मध्यम इस राग में ग म ध प तीव्र म ग कड़ियुक्त रे ऐसा स्वर संगति में पंचम पर अड़ुलगन के रूप में तथा ध तीव्र म प या प तीव्र म प अथवा तीव्र म प ध प इस भांति पंचम और धैवत के आश्रित है। इस राग में इसका अनाभ्यास अल्पत्व ही कहेंगे। पंचम प्रस्तुत राग का आंशिक न्यास तथा संपूर्ण न्यास बहुत्व का स्वर है। यह स्वर आरोह अवरोह में साग म प तीव्र म प ध नि प इस प्रकार प्रयोग होता है और इस राग में न्यास युक्त होकर विचरता रहता है। ग म ध प स्वर संगति में लंघन युक्त होकर अर्थात कभी कभी अपने को छुपाकर पुनः प्रकट होकर अपने प्रभाव को राग में प्रत्यक्ष करता रहता है। धैवत का इस राग में ग म प ध नि या तीव्र म प ध नि या ग म ध प इस भांति दीर्घ रहित तथा अनाभ्यास है। इसके अलावा ग म प नि तार सा तार रे नि प या ध तीव्र म प तार सा संगति में इसका लंघन भी स्पष्ट है। इस हेतु राग में इस स्वर का अनभ्यास तथा लंघन दोनों ही प्रकार का अल्पत्व मानेंगे। निषाद भी इस राग में न्यास रहित है। आरोह अवरोह में प ध नि प या ग म प नि तार सा तार रे नि प इस भांति पंचम निषाद की और निषाद पंचम की संगति अधिकतर सामने आती है। द्रुत तान में तीव्र म प ध नि ध प तीव्र म प या ध नि तार सा नि ध प इस प्रकार सरल और ध तीव्र म प तार सा या तार सा ध नि प स्वर संगति में लंघन युक्त हो जाता है। इस कारण राग में इसका दोनों प्रकार का अल्पत्व मानेंगे। द्रुत तान की लपेट में इस राग के उत्तरांग की वक्रता समाप्त भी हो जाती है, परंतु पूर्वांग के स्वर समूह द्वारा गुणिजन राग स्वरूप को संभालते रहते हैं। आरोह सा ग म प ग म प ध नि प ध तीव्र म प सा तार सा, अवरोह तार सा तार रे नि प ग म ध प रे सा। मुख्य स्वर समूह ग म ध प तीव्र मा ग कड़युक्त रे सा।